हेलो
हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून आशुतोष इज टुडे प्रेजेंट, या यू आर इन जैन वेरी मच। आशुतोष इज इन जैन, राहुल ऑल आर यू, ऑल ऑफ यू आर कीपिंग गुड हेल्थ, योर फैमिली इज ऑल्सो कीपिंग गुड हेल्थ बैक होम। यस आई एम, ऑल्दो आई एम हैविंग लॉट ऑफ यू नो नेक पेन, व्हाट आई कॉल दैट स्पॉन्डिलाइटिस, यू नो सर्वाइकल प्रॉब्लम इज देयर इन माई नेक, बट स्टिल माई basic job does not stop me from teaching to people like you who are available. So today we will be discussing about the work measurement technique, which is a very important technique, work measurement technique. Work measurement technique is a very important part when we discuss the two components, time study and method study. What I am calling time study and method study. In this part of the syllabus, we will try to understand exactly what is the meaning of work measurement. My voice is audible. Everybody is getting clear voice. So first of all, we will understand what is the meaning of work measurement. In the most simple words, it is the art of observing and recording the time required to do each detailed element of an industrial activity or operation. So I have spoken two words, the art of observing and recording. I again repeat two words, observing and recording the time required to do each element of industrial activity. Now you can ask a question, what do you mean by industrial activity? Industrial activity kya hoti hai? Any manual or machine operation becomes any mental manual machine operation is called industrial activity. Now there are three things: mental time, when operator is thinking for some alternative operations, it is called mental time. Jo time operator leta hai sochte hue kisi vaikalpik gativiti ko karne ke liye kya jati hai, wo mental time. मैनुअल टाइम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। नंबर वन जो पढ़ाया था मैंने पिछली बार, मटेरियल हैंडलिंग। नंबर टू, हैंडलिंग ऑफ टूल्स। एंड नंबर थ्री, हैंडलिंग ऑफ मशीन्स। ये हो गया आपका मैनुअल टाइम। एंड थर्ड इज मशीन टाइम। मशीन टाइम इंक्लूड्स टाइम टेकन बाय मशीन्स in performing the requisite operations. So in work measurement, there are some objectives of work measurement. The very first objective, jo bahut hi important hai, number one, target time for each job. टारगेट टाइम फॉर ईच जॉब कैन बी एस्टिमेटेड. हम हर जॉब को पूरा करने का एक टाइम स्पेसिफिकली साइंटिफिकली एस्टिमेट कर सकते हैं. नंबर टू, साउंड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स. साउंड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स बाय कंपेयरिंग बेसिक टाइम्स. थर्ड, यूजफुल वेज इंसेंटिव स्कीम्स कैन बी डेवलप्ड. यूजफुल वेज इंसेंटिव स्कीम्स कैन बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट टाइम्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है नंबर फोर, इट कैन लीड टू प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन. प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन. फिफ्थ, हेल्पफुल इन स्टैंडर्डाइजिंग कंडीशंस फॉर इफिशियंट परफॉर्मेंस. हेल्पफुल इन स्टैंडर्डाइजिंग कंडीशंस फॉर इफिशियंट परफॉर्मेंस. और एक और ऑब्जेक्टिव मेरे को रिकॉल हो रहा है, इफेक्टिव इन पीपीसी. इफेक्टिव इन पीपीसी एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग. इफेक्टिव इन पीपीसी एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग. नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज वी आर अंडरस्टैंडिंग वर्क मेजरमेंट. समटाइम्स यू शुड ऑल्सो बी गेटिंग कंफ्यूज अबाउट द बेसिक प्रोसीजर ऑफ टाइम स्टडी. नोट डाउन बेसिक प्रोसीजर फॉर टाइम स्टडी. क्या बताया मैंने, जो बताने वाला हूं आपको मैं, टाइम प्रोसीजर का बेसिक प्रोसीजर. बेसिक प्रोसीजर फॉर टाइम स्टडी, इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं. ये स्टेप बेस्ड प्रोसीजर है ये. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा आपको कि स्टार्ट ए कार, तो मैंने आपको कार की चाबी दे दी कि भाई ये कार खड़ी हुई है, इस कार को आप चालू करो. तो आपको टारगेट तो असाइन हो गया. अब आपको इसको आगे क्या करना है, जो कंसेप्ट है और जो प्रैक्टिकल है उसको मैच करते हुए आगे बढ़ना है. तो जो पहला जो काम करना है, जो स्टेप वन इसमें आएगी, वो आएगी सिलेक्ट द जॉब फॉर टाइम स्टडी एंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी. Select the job for time study and define the objective of time study. Number two, analyze the operation. तो यहां पर अब यहां आ जाएगा method study आ जाएगी बीच में. Analyze condition कौन कौन सी है, worker trained है कि नहीं, standard methods है कि नहीं. तो यहां पर आपको method study की help लेनी पड़ेगी. Training of operator कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है. थर्ड स्टेप है सिलेक्ट द ऑपरेटर टू बी स्टडीड इफ मोर देन वन टास्क परफॉर्म्ड. फोर्थ, रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड मेथड, अबाउट द मशीन, अबाउट द क्वालिटी रिक्वायर्ड, अबाउट द ऑपरेशन, एवरीथिंग about the working conditions, recording. Fifth step jo hai, divide the operation into reasonably small elements. Chabi le li car ki aapne, aap push button karoge, button ko push karoge, electric hai, ya aap uske andar chabi ko lock ke andar insert karoge, gate ko open karoge, to kya kara aapne, you are dividing. Sixth, time the operator for each of the elements. Seventh, collect and record the data of required number of cycles by way of timing. And rating the operator. eighth step. Note the representative watch time. घड़ी आ गई अब. अब घड़ी बीच में आ गई अपने पास में. Note the representative watch time and calculate the normal time. अब मैं आपके सामने दो कंसेप्ट लेके आ रहा हूं धीरे से. नॉर्मल टाइम क्या बोला मैंने अभी? नॉर्मल टाइम सामान्य समय. अब नॉर्मल टाइम क्या होता है? यू कैन आस्क क्वेश्चन कि सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल टाइम. तो नॉर्मल टाइम का एक फार्मूला है छोटा सा, लिख लीजिए आप लोग. नॉर्मल टाइम कैसे निकलता है? नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू एनटी. नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर्स. ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेटिंग फैक्टर्स. तो क्या निकल जाएगा? नॉर्मल टाइम. ध्यान रखना हमेशा, कैलकुलेट नॉर्मल टाइम फॉर होल जॉब. कैलकुलेट नॉर्मल टाइम फॉर होल जॉब बाय एडिंग नॉर्मल टाइम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. और सबसे जो लास्ट स्टेप नंबर 9 आएगी, 9 नंबर स्टेप जो आएगी वो आएगी डिटरमाइनिंग एसटी, डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम, डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम बाय एडिंग अलाउंसेस. By adding allowances, allowances, by adding allowances, allowances, by adding allowances, which are very important in the time study. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर अलाउंस क्या होता है? अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस मतलब क्या हुआ? अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड टू कंपनसेट द वर्कर फॉर प्रोडक्शन इंटरप्शन. जैसे मान लीजिए पढ़ा रहा हूं अभी मैं, और पढ़ाते पढ़ाते किसी का मोबाइल गिर गया, या किसी का बीच में कोई दूसरा कॉल आ गया, या किसी का व्हाट्सएप की रिंगटोन बज गई, किसी की इनकमिंग कॉल आ गई, तो ये क्या हो गया? एक तरह का क्या हो गया? इंटरप्शन हो गया. तो जब इंटरप्शन होता है तो क्या होगा? डिले होगा. तो डिले में ऑकर ड्यू टू ऑपरेटर्स पर्सनल नीड्स. जैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक ऑपरेटर है, उसको पानी पीना है कि नहीं, या चाय पीना है, या ऑपरेटर को चाय पीने के लिए टाइम चाहिए, या उसको पानी पीने के लिए मशीन छोड़ के जाना है, या ही हैज टू गो टू टॉयलेट, या ही हैज टू गो, ही हैज टू मेक ए ट्रिप टू ड्रेसिंग रूम, या वॉशरूम जाना है उसको. तो ये क्या कहलाएगा? पर्सनल अलाउंस. क्या कहलाएगा? ये पर्सनल अलाउंस. तो कभी भी आपको ये जो टॉपिक है अलाउंस वाला, तो अलाउंसेस तीन तरह के होते हैं. एक होता है पर्सनल अलाउंस, दूसरा होता है फैटिक अलाउंस, फटीक अलाउंस, FATIGUE, फटीक अलाउंस. जब वर्कर फिजिकली या मेंटल टायर्ड फील करता है एग्जिस्टिंग इन ए पर्सन, उसके जॉब को फटीगनेस आ जाती है, थकान आ जाती है, तो उसको क्या देना पड़ता है? फटीग अलाउंस देना पड़ता है, फैटिक अलाउंस, FATIGUE, फैटिक अलाउंस. कई बार टेम्परेचर की फटीग क्यों होता है? कई बार ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, कई बार लाइट का लेवल ज़्यादा कम हो गया, कई बार हवा एयर फ्रेशनेस नहीं हो रहा है, या कई बार पीछे आवाज़ हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है, नॉइज़ ज़्यादा हो रही है ना. कई बार काम करते करते बोर हो जाता है आदमी, कई बार उसकी मस्कुलर टायर्डनेस होती है ड्यू टू स्ट्रेस ऑन सम मसल्स. कोई मशीन है मान लीजिए, तो उसकी मसल हो गई, मसल पुल हो गई, या मोनोटोनी हो गई, लगातार काम करते करते एक ही काम को करते करते मोनोटोनी हो जाती है, तो क्या होती है? फटीग. और कई बार होती है हेल्थ, वर्कर की हेल्थ क्या करती है? फटीग करती है. इमोशनली उसको घर की याद आ रही है, इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, उसको रेस्ट कम मिल रहा है कि नहीं, या उसकी डाइट कंप्लीट नहीं है, खाना नाश्ता ढंग से करके नहीं आया वो, तो क्या होगा? फटीग होगा. और एक होता है डिले अलाउंस विच आर अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल. डिले अलाउंस कभी हो सकते हैं. मान लीजिए पावर चला गया. अब मान लीजिए, मान लो आप पढ़ रहे हो और मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई, या आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया एकदम, ये क्या हुआ? पावर फेलियर हो गया. या आपके मोबाइल में कोई आपका जो स्पीकर है या इनकमिंग कॉल का बटन है वो खराब हो रहा है, क्या बोलेंगे, फॉल्टी मटेरियल, नो वर्क, फॉल्टी टूल, फॉल्टी मशीन, क्या करेंगी ये, डिले करेंगी। तो मैंने आपको आज तीन तरह के अलाउंस पढ़ा दिए। एक पढ़ाया पर्सनल अलाउंस, दूसरा पढ़ाया फतिग अलाउंस, और तीसरा पढ़ाया प्रोडक्शन डिले अलाउंस। अलाउंसेस क्या होते हैं, एक तरह के ड्यू टू इंटरप्शंस इन प्रोडक्शन। हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंटरप्शन होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए अलाउंसेस का प्रोविजन होता है। द फंडामेंटल पर्पज ऑफ अलाउंसेस, द फंडामेंटल पर्पज ऑफ ऑल थ्री अलाउंसेस इज टू एड एनफ टाइम टू द नॉर्मल टाइम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू इनेबल द एवरेज वर्कर टू मीट द स्टैंडर्ड वाइल परफॉर्मिंग ए नॉर्मल प्लेस वाइल परफॉर्मिंग एट ए नॉर्मल पेस। तो उसकी जो नॉर्मल पेस है, जो उसकी सामान्य गति काम करने की है, वो अफेक्ट कम हो या कम से कम हो, तो एवरेज वर्कर को अलाउंस का प्रोविजन करना पड़ता है ताकि उसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी मेंटेन रहे। क्लियर? तो इससे क्या होगा, अलाउंस क्या करते हैं, अलाउंसेस उसको साइकोलॉजिकल हेल्प करते हैं, वर्कर की साइकोलॉजिकल बैकअप को हेल्प करते हैं। अब कई बार एक क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं क्लास के अंदर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, डिफरेंस बिटवीन मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। नेवर 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 फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इन टाइम स्टडी दी मेजर इम्फेसिस इज गिवन ऑन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर दी पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन टाइम स्टडी फोकस इज ऑन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर दी पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट एंड डिलीवरी शेड्यूल ऑफ दी विथ रिस्पेक्ट टू वेज इंसेंटिव। वाइल इन मोशन स्टडी उल्टा होगा, इन मोशन स्टडी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, हाउ बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग वर्क इज डिटरमाइंड एंड वर्कर्स आर ट्रेन टू फॉलो इट। इस काम को आपको ऐसे करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ द टाइम स्टडी। जो सबसे प्राइमरी लिमिटेशन है, इसकी शॉर्टकमिंग नंबर वन, शॉर्टकमिंग नंबर वन, अंटिल जॉब्स आर वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अंटिल जॉब्स आर नॉट वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाय दिस टेक्निक। नंबर टू, इन सिचुएशंस वेयर स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी प्रिसाइसली डिफाइंड, इन दोज केसेस प्रोडक्शन इंसेंटिव्स मे कॉज फर्दर डिटेरेशन इन क्वालिटी लेवल्स। थर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स वेयर पीस रेट ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम एग्जिस्ट। आप लोगों ने एचआर पढ़ा होगा, एचआर में आपने पढ़ा होगा वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा आप लोगों ने एचआर में, उसमें एक टॉपिक होता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो पीस रेट, जितना काम किया उतना पेमेंट मिलेगा, पीस रेट सिस्टम, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। तो इट इज नॉट पॉसिबल, कौन सी, टाइम स्टडी इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स वेयर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज एग्जिस्टिंग। और चौथा जो है, इसका लिमिटेशन जो है, चौथी लिमिटेशन जो है, इफ स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन इज देयर दे कैन अपोज दिस सिस्टम। और पांचवी लिमिटेशन जो है इसकी, टाइम स्टडी इज मोस्टली एप्लीकेबल ओनली वेयर द वर्क इज विजिबल। जहां व्यक्ति का काम विजिबल है, वर्कर का काम विजिबल है, वहां पर ये इजीली मोस्टली एप्लीकेबल है। अब मैं आपको आगे चलूंगा थोड़ा लेके एडवांटेजेस, इसके जो एडवांटेजेस हैं टाइम स्टडी के, तीन चार बड़े बड़े एडवांटेज हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज जो है, टू प्लान फ्यूचर प्रोडक्शन इन मोर बेटर वे। एडवांटेज नंबर वन, टू प्लान फ्यूचर प्रोडक्शन इन ए बेटर वे, क्योंकि इससे क्या होगा आपको, टू प्लान फ्यूचर प्रोडक्शन इन ए बेटर वे, इसके कुछ सब पॉइंट्स भी हैं। नंबर वन, सब पॉइंट नंबर वन, वी कैन एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, वी कैन एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, वी कैन मेक और बाय डिसीजंस, वी कैन टेक मेक और बाय डिसीजंस, हमको यह सामान बनाना है या खरीदना है, मेक और वी कैन टेक मेक और बाय डिसीजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब एडवांटेज है। वी कैन एस्टिमेट डिलीवरी डेट्स, सामान की डिलीवरी डेट कब दे देंगे हम लोग, सामान को बना के कब हमारा जो डिलीवरी ऑर्डर कब पूरा हो जाएगा, वी कैन एस्टिमेट डिलीवरी डेट्स, वी कैन एस्टिमेट लेबर कॉस्ट, वी कैन एस्टिमेट लेबर कॉस्ट। एंड अनदर एडवांटेज जो उसका है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैन बी मेड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैन बी मेड। इसका जो एक और एडवांटेज मुझे रिकॉल कर रहा हूं मैं, टाइम स्टैंडर्ड्स ऑलवेज हेल्प इन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम स्टैंडर्ड्स ऑलवेज हेल्प इन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड इवन परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस वर्क स्टेशन, अलग अलग वर्क स्टेशन के परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर सकते हो। और लास्ट इसका एडवांटेज जो है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग इंडिविजुअल और ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स, एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग इंडिविजुअल और ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स फॉर अबव एज परफॉर्मेंस, अबव एवरेज परफॉर्मेंस। नाउ व्हेन वी मूव टू द मोर कंसेप्चुअल इंसाइट्स ऑफ time study under the work measurement techniques, there are three important types of time, note kar lo aap, teen tarah time hote hain, pehla hota hai observed time aur actual time, note kar lo, observed time aur actual time, OBSERVED, observed time aur actual time। If an operator is working with 100% efficiency, then observed time will be equal to standard time. So, क्या होता है? It is the actual time taken in completing the job or desired task. उसको बोलते हैं हम actual time. Repeat कर दूं? It is the actual time taken in completing the job or desired task. Observed time can be used in method study, in plant layout, in method study, in plant layout, and in realistic setting of starting and finishing times of operations. दूसरी जो category होती है normal time, NT, normal time. It is the productive time required to perform a job. It is the productive time required to perform a job utilizing appropriate work method and workplace layout and performing at normal pace, PACE. इसका छोटा सा फार्मूला है, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू एवरेज ऑब्जर्व्ड ऑब्लिक एक्चुअल टाइम into performance rating into multiplied by performance rating upon 100. Upon 100. Is it okay? Is it okay? Repeat karun. इसका एक और छोटा फार्मूला है, उसको और आसान बना दिया अपन ने, मैंने इसको लिखते लिखते और आसान बना लिया आप लोगों के लिए। और नॉर्मल टाइम फॉर ए जॉब और यूनिट, नॉर्मल टाइम फॉर ए जॉब और यूनिट इज इक्वल टू टाइम वर्कड, TIME टाइम वर्कड, WORKED टाइम वर्कड मल्टीप्लाइड into performance rating upon number of units produced, third, तीसरी category, observed time हो गया, normal time हो गया, अब बात करने हम लोग standard time की, ठीक है, standard time. What is standard time? It is the amount of time required by an operator with average skills. Amount of time required by an operator with average skills who uses an average amount of effort and working under existing working condition. Under existing working conditions, using a specified method and machines at a standard pace. इसको रिपीट करूं एक बार और, standard time is the amount of time required by an operator with average skills who uses an average amount of effort and is working under existing working conditions using the specific method and machines at a standard pace. अब मैंने एक टर्म अभी और ली थी, उसका नाम था परफॉर्मेंस रेटिंग। अभी मैंने बोला था ना परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है? Performance rating means gauging and comparing the performance of pace rate of a worker against a standard performance. जैसे आप लोगों का टेस्ट कराते हैं, आप लोग हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट वन, टेस्ट टू, सेशनल होते हैं, आपके सीसी होते हैं, उससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, रेटिंग होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस, बी प्लस, सी, सी प्लस, डी, है कि नहीं? Performance rating means gauging and comparing the performance or pace rate of a worker against a standard performance level set by the time study analyst. तो वो क्या करेगा? Time study analyst सबके performance को compare करेगा and judge करेगा, वो जज करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है। तो इन एक्चुअल वर्क मेजरमेंट सिचुएशन द टाइम स्टडी इंजीनियर, टाइम स्टडी एनालिस्ट, जो भी आप नाम ले लें उसका, कभी कभार टाइम स्टडी इंजीनियर होता है, कभी टाइम स्टडी एनालिस्ट होता है, साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व्स द एक्चुअल टाइम टेकन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। मान लीजिए अभी आपके सामने में बैठा होता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और किसकी लिखने की स्पीड कितनी है, आशुतोष जल्दी लिख रहे हैं या अर्शी स्लो लिख रही है या मानसी केवल ध्यान से सुन रही है आंख बंद करके, तो उस प्रकार से क्या करेगा वो, द एक्चुअल वर्क मेजरमेंट सिचुएशन द टाइम स्टडी इंजीनियर और एनालिस्ट साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व द एक्चुअल टाइम टेकन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क एंड देन रेट्स द परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या करेगा वो, रेटिंग करेगा। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है, परफॉर्मेंस रेटिंग कैन बी कैलकुलेटेड विद ए फार्मूला, बहुत छोटा फार्मूला है, पी आर इज इक्वल टू P dot R dot PR is equal to performance rating is equal to observed performance upon normal performance into 100. Observed performance upon normal performance into 100. यहाँ पर एक शब्द आता है, आप जो पुस्तक पढ़ोगे आप लोग, वेन यू विल रिफर मोर टेक्स्ट बुक्स मटेरियल, आप कभी जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आराम से बैठ के या आपको टाइम मिले तो अपने आप नोट्स बनाओगे, तो एक वर्ड और आएगा, उसको बोलते हैं रेटिंग फैक्टर। रेटिंग फैक्टर, आर ए टी आई एन जी, रेटिंग फैक्टर। और कुछ बुक्स में उसका नाम लिखा हुआ लेवलिंग फैक्टर, एल ई वी डबल एल आई एन जी, लेवलिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल टाइम, जो नॉर्मल वर्कर एक टाइम लेगा, नॉर्मल टाइम, वो बन जाएगा आपका रेटिंग फैक्टर। तो टाइम स्टडी जो इंजीनियर होगा, टाइम स्टडी का जो एनालिस्ट होगा, मल्टीप्लाइज एक्चुअल टाइम और ऑब्जर्व टाइम विथ फैक्टर कॉल्ड रेटिंग फैक्टर। उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, रेटिंग फैक्टर से, तो बन जाएगा वो रेटिंग फैक्टर या लेवलिंग फैक्टर। ये क्या करता है, ये रेटिंग फैक्टर क्या करता है, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी। ये दिखाता है आपकी परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी ऑफ वर्कर और ऑपरेटर विच शो हाउ इफिशियंट एन ऑपरेटर इज इन कंपेरिजन टू हिज फेलो ऑपरेटर्स। फेलो ऑपरेटर्स के बीच में आपस में कंपेयर करने में क्या काम आता है, रेटिंग फैक्टर काम आता है। किसकी स्पीड सुनने की अच्छी है, किसकी स्पीड लिखने की अच्छी है, कोई उल्टे हाथ से लिख रहा है, कोई सीधे हाथ से लिख रहा है, काम वही है, पर आपके काम के जो लेवल है उसकी इफिशियंसी को क्या करता है, ये मेजर करता है, ये बन जाता है रेटिंग फैक्टर। इसकी पांच टेक्निक होती है, नोट डाउन दी रेटिंग टेक्निक्स, पांच तरह की टेक्निक होती है। पहली होती है स्पीड रेटिंग, स्पीड रेटिंग, स्पीड एस पी डबल ई डी, स्पीड रेटिंग। स्पीड रेटिंग में तो फार्मूला आ जाएगा, वही सिंपल फार्मूला आ जाएगा, जहां क्या करेंगे हम, ऑपरेटर की जो मूवमेंट है उसकी स्पीड को देखेंगे, स्पीड ऑफ द ऑपरेटर्स मूवमेंट, स्पीड ऑफ द ऑपरेटर्स मूवमेंट इन रिलेशन टू नॉर्मल पेस एंड इज नोटेड एज ए फैक्टर, तो बन जाती है स्पीड रेटिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम, इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाइड विथ वर्कर्स स्पीड अपॉन स्पीड एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी वर्कर। थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला है ये, मैं फिर से आपको समझाने के लिए समझा देता हूं। नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू, ऑब्जर्व टाइम नोट कर लिया आपने, इंटू वर्कर्स स्पीड अपॉन स्पीड एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी वर्कर। दूसरी जो रेटिंग की टेक्निक होती है, दूसरी टेक्निक जो रेटिंग की होती है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग, वेस्टिंग WESTING, वेस्टिंग हाउस WESTING, वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग। इसको डेवलप किया था, मुझे नाम याद आ रहा है उनका, विद्वान थे सी बिडॉक्स, सी डॉट ई डॉट बिडॉक्स, बीई डी ए यू एक्स, सी डॉट ई डॉट बीई डी ए यू एक्स, बिडॉक्स ने, उन्होंने चार फैक्टर बताए हैं वेस्टिंग हाउस टेक्निक में, चार तरह के रेटिंग के फैक्टर बताए हैं, फोर फैक्टर्स, ये आप चारों आप अभी लागू हो रहे हैं, हम सब पे लागू हो रहे हैं। नंबर वन स्किल, नंबर टू एफर्ट, नंबर थ्री कंडीशंस, नंबर फोर कंसिस्टेंसी। स्किल, एफर्ट, कंडीशंस एंड कंसिस्टेंसी, वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग। तीसरा होता है सिंथेटिक रेटिंग, सिंथेटिक रेटिंग सिस्टम जो है इट वॉज प्रपोज बाय मारो, विद्वान हुए बड़े मारो, MORROW, मोरो मोरो बोलेंगे इसको हम लोग, टुमारो टुमारो, तो MORROW मोरो। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ PMTS, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ PMTS। इसको चैप्टर को मैं आप कभी आराम से पढ़ाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड्स, PMTS, PMTS। सो यहां पर ऑपरेटर को इवेल्युएट करते हैं हम, ऑपरेटर की जो स्पेस है काम करने की जो उसकी स्पेस है, इट इज इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ PMTS, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम वैल्यूज। का छोटा फार्मूला है, सिंबॉलिकली इसको हम समझ सकते हैं फार्मूले से, R is equal to P upon A। R क्या होगा, वेयर R is equal to परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, R is equal to परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। P समझ गए आप लोग, PMTS, और A is equal to एवरेज एक्चुअल टाइम। अब मुझे आशुतोष बताएंगे, आशुतोष एवरेज एक्चुअल टाइम का दूसरा नाम क्या होता है बेटे, एवरेज एक्चुअल टाइम का? यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, एवरेज एक्चुअल टाइम मींस ऑब्जर्व टाइम फॉर सेम एलिमेंट ऑलवेज प्रेफरेबली इन मिनट्स, हमेशा मिनट्स में आता है। चौथी जो मैं बता रहा था आपको रेटिंग की मेथड, वो होती है ऑब्जेक्टिव रेटिंग। इसको डेवलप किया था M.E. मुंडेल ने, MUNDEL, मुंडेल। ये नाम क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव रेटिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो काम करने का टेम्पो है, इन दिस ऑपरेटर्स टेम्पो ऑफ डूइंग ए जॉब इज टेकन इनटू अकाउंट, टेम्पो TMPO, टेम्पो, ठीक है। तो जिस तरह काम करने का उसका मोमेंट है, काम करने का उसका जो उत्साह है, काम करने की जो उसकी स्टाइल है, वो पूरा क्या करेंगे हम इवेल्युएट करेंगे, और साथ में उसकी जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी और जॉब की डिफिकल्टी है उसको भी क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, जॉब डिफिकल्टी एंड जॉब कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो कंसीडर्ड। इसमें 5-6 फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ऑब्जेक्टिव रेटिंग में, 5-6 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जॉब डिफिकल्टी असेसमेंट, वो जरूर आपको दिमाग में होने चाहिए, यू मस्ट बी एबल टू नोट डाउन। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ बॉडी यूज्ड। नंबर टू, फुट पेडल्स। थर्ड, आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन, और एक और मुझे रिकॉल हो रहा है, हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स। और लास्ट जो है एक और, वेट, वजन, WEIGHT, वेट। और एक और उसमें है, एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर छठा फैक्टर मुझे एकदम स्ट्राइक बराबर हो रहा है, बाई मैनुअलनेस, बिन मैनुअलनेस, ठीक है। तो ये 6 फैक्टर जो हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे आखिरी जो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रेटिंग की जो सिस्टम टेक्निक है वो है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग। psychological evolution of performance rating. Many studies have shown that there is a relationship between physical work and amount of oxygen. Yahan se sunna aap log. Many studies have shown that there is a relationship between physical work and amount of oxygen consumed by a worker. Reliable indicator of one's performance. It has been found that change in heartbeat rate is also a reliable measure of muscular activity. Moreover, this technique is easier than consumption of rate of oxygen. तो यहां पर क्या करते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर, यहां पर हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ऑपरेटर हैविंग वर्कड फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ही इज अलाउड टू सिट ऑन ए चेयर एंड रिलैक्स. एक ऑपरेटर जो है उसने काम कर लिया, उसको आप बिठाओगे किस पे, चेयर पे, और रिलैक्स होगा. एंड साइड बाय साइड हार्ट रेट इज मेजर्ड एंड कंपेयर्ड विथ अर्लियर रिकॉर्ड टिल द रेट बिकम्स स्टेबलाइज्ड. तो मालूम पड़ता है कि साइकोलॉजिकली उसमें कितना इवोल्यूशन किया आपने, उसकी हार्ट बीट से मालूम पड़ता है कि काम करने के पहले और काम करने के बाद हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी टाइम स्टडी से. तो ये सब आज के लेक्चर में मुझे आपसे इंटरेक्ट करना था, और मुझे आज खुशी कि अपन लोगों ने बहुत सारे इंटरनल पार्ट कवर किए वर्क मेजरमेंट टेक्निक में. वर्क मेजरमेंट का मैंने स्टार्ट किया, डेफिनेशन बताया आपको, ऑब्जेक्टिव शेयर किया आप लोगों से, बेसिक प्रोसीजर शेयर किया, देन आई हैव डिस्कस विद यू द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द टाइम स्टडी, देन वी हैव डिस्कस द वेरियस टाइम एस्टिमेट्स, ओटी, ऑब्जर्व टाइम, और वी कॉल इट एक्चुअल टाइम. वी डिस्कस द एनटी, नॉर्मल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो डिस्कस विद यू वेरी इंपॉर्टेंट थ्री टाइप्स ऑफ अलाउंसेंसेस. अलाउंसेंस जो होते हैं पर्सनल अलाउंस, सटीक अलाउंस, प्रोडक्शन डिले अलाउंस, और कभी कभी चौथा अलाउंस एक और होता है, नोट डाउन, उसको बोलते हैं स्पेशल अलाउंस. स्पेशल अलाउंस फोर्थ कैटेगरी होती है, स्पेशल अलाउंस. ये बहुत ही टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होते हैं, फॉर एक्टिविटीज विच आर जनरली द पार्ट ऑफ वर्क, विच आर जनरली द पार्ट ऑफ वर्क साइकिल, बट स्टिल कंसिडर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कंप्लीटिंग द वर्क. स्पेशल अलाउंस बहुत ही स्पेशल कंडीशन में मिलते हैं, लाइक पीरियडिक एक्टिविटी अलाउंसेस फॉर सेटिंग अप ए प्लानर, मेंटेनेंस ऑफ ए लेथ मशीन. मेंटेनेंस करना मशीन का आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा स्पेशल अलाउंस. दूसरा होता है इसी के अंदर इंटरफेरेंस अलाउंस, इंटरफेरेंस अलाउंस. अब मान लीजिए एक वर्कर है और एक साथ दो मशीन पे काम कर रहा है. व्हेन ए वर्कर और ऑपरेटर इज लुकिंग आफ्टर टू आर मोर मशीन्स एंड वन आर मोर मशीन स्टॉप्स वर्किंग व्हाइल ही इज बिजी विद अदर मशीन. एक वर्कर है, वो काम कर रहा है दो या दो से अधिक मशीनों पे, एक मशीन ने काम करना बंद कर दिया. द रिजल्ट ऑफ मशीन स्टॉपेज और मशीन इंटरफेरेंस कॉजेज लॉस ऑफ प्रोडक्शन, दस फॉर नन ऑफ हिज फॉल्ट द वर्कर सफर्स बिकॉज ऑफ लो आउटपुट. सो इंटरफेरेंस अलाउंस देना पड़ेगा. समझ आया कि नहीं आपको, कि जो ऑपरेटर या वर्कर दो या दो से अधिक मशीन में काम कर रहा है और एक मशीन ने काम करना बंद कर दिया, तो वो दौड़ के क्या करेगा, उस मशीन पे जाएगा वो. तो जो उसकी जो नंबर वन मशीन थी उसका क्या हुआ, काम मशीन का क्या हुआ, वहां का प्रोडक्शन लॉस हो गया. तो उसकी फॉल्ट किसकी है, फॉल्ट वर्कर की नहीं है, फॉल्ट मशीन की हुई है. तो क्या देना पड़ेगा उसको, अपने को स्पेशल अलाउंस देना पड़ेगा. ठीक है, तो टाइम स्टडी के अंदर तीन तरह की होती हैं टाइम रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, ये आप नोट कर लीजिए. तीन तरह की टेक्निक्स होती है, वेरियस टाइम रिकॉर्डिंग टेक्निक्स इन टाइम स्टडी. एक होती है स्टॉपवॉच मेथड, स्टॉपवॉच. आप लोगों ने चेस के प्लेयर्स देखे होंगे, चेस के प्लेयर्स खेलते हैं ना, शतरंज खेलते हैं.
हेलो,
अच्छा अभी सब आ गए फिर ऑनलाइन,
सभी
लोग आ गए.
कर लो आराम से, अभी फिर आप मुझे कॉल बैक करोगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ ये आशुतोष, ये मेरे को बार बार यूनिवर्सिटी कहती है कि इसको यदि अपने को यूनिवर्सिटी में डालना हो वेबसाइट पे, तो वो कहते हैं कि इसको VLC रिकॉर्डर में वो करो, क्या बोलते हैं, सेव करो
ऑडियो को।
हाँ, जिसको अपने को वेबसाइट पे डालना हो तो VLC रिकॉर्डर पे। VCL क्या होता है? हाँ हाँ, उसी में एक ऑप्शन आता है सेव हो जाता है ये, तो ये अभी अपना लेक्चर बीच में टूट गया था, तो मैं इसको पहले एक बार फिर से इसको मानसिक बोलो कॉल बैक करे जरा, है ना, तो मैं 5 मिनट और लेके दोनों मर्ज कर देना बेटे। मानसी, आपको मर्जिंग करना आता है ऑडियो का? अच्छा, ऑडियो मर्जिंग करना, दूसरा करना ऑडियो मर्ज करने के पहले थोड़ा वो देना इंट्रो, टुडे वी हैव विथ अस आवर फैकल्टी, है ना, डॉक्टर धर्मेंद्र मेहता, ही इज डिस्कसिंग विद अस टुडे वर्क मेजरमेंट टेक्निक, टॉपिक वर्क मेजरमेंट टेक्निक, है ना। शुरू में बोलते कमेंट्री करना पड़ती है शुरू में, उसके बाद मेरा लेक्चर चालू कर देंगे। ओके ओके, अभी आप मुझे 2 मिनट का ब्रेक देंगे, थोड़ा पानी पी लूँ। हेलो हेलो, हाँ आप काट रहे हैं कि अभी मैं ब्रेक कर लूँ, 2 मिनट पानी पी लूँ? अब हम बात कर रहे थे वेरियस टाइम रिकॉर्डिंग टेक्निक, टाइम स्टडी कैन बी परफॉर्म्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक या मेथड बोलते हैं उनको। नंबर 1 होती है स्टॉप वॉच मेथड, STOP स्टॉप घड़ी, WATCH स्टॉप वॉच मेथड। दूसरी होती है टाइम रिकॉर्डिंग मशीन मेथड, और तीसरा होता है MPC मोशन पिक्चर कैमरा, MPC मोशन पिक्चर कैमरा। टाइम रिकॉर्डिंग मशीन मेथड, तीसरी होती है मोशन पिक्चर कैमरा मेथड। आप लोगों ने चेस प्लेयर्स के चेस के मैच देखे होंगे टेलीविजन पर, कभी खेलते हुए आपने 2-3 चेस प्लेयर्स को देखा होगा, खेल रहे हैं, 2 प्लेयर खेल रहे हैं, बीच में वॉच रखी रहती है, डेसिमल आवर स्टॉप वॉच या डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच, 2 तरह की होती है, एक होती है डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच, एक होती है डेसिमल आवर स्टॉप वॉच। An ordinary stopwatch can serve the purpose of simple time study work, but for the sake of foolproof use of stopwatch and technological advantages in the development of watch industry, in dono mein se decimal hour stopwatch or decimal minute stopwatch, aur kai baar ek nayi technique aati hai split hand stopwatch. चौथी होती है विंक स्टॉप वॉच, WINK विंक स्टॉप वॉच। इसमें मिनट भी होंगे, लार्ज डायल होगी रिप्रेजेंटिंग 0.001 मिनट। जो विंक स्टॉप वॉच होती है, दिस वॉच इज स्टार्टेड बाय द प्रेसिंग द क्राउन, देखो घड़ी पे ऊपर होती है क्राउन होती है। कई बार आप रात को अलार्म बजाने के पहले उसको आप क्या करते हो, अलार्म भर देते हो, उस सुबह आपके तकिए पे बजती है वो, उसको आप क्या करते हो, झल्ला के बंद कर देते हो, यार ये हमारी डिस्टर्ब कर रही है, क्या बोलते हैं। तो दिस वॉच इज स्टार्टेड बाय प्रेसिंग द क्राउन, स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग द क्राउन एंड रीसेट बाय प्रेसिंग द क्राउन। इसमें तीन ऑफ फंक्शन होते हैं, स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रीसेटिंग। क्राउन मतलब उसके ऊपर का जो नील पैंट है वो बन जाता है क्राउन। द स्टॉप वॉच मेथड जो है इसके अंदर चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। नंबर वन, टाइम स्टडी वॉच चाहिए। दूसरा होता है टाइम स्टडी बोर्ड, टाइम स्टडी बोर्ड। और तीसरा होता है टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट, टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट, SHWT, टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट। और आखिरी में होता है स्टील रूल, स्टील रूल, STELL, स्टील रूल, स्टील रूल। इसी प्रकार से होता है टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, इसमें एक पेपर टेप होता है और उस पेपर टेप को, दिस पेपर टेप इज ग्रेजुएटेड इन सच ए वे इट गिव्स टाइमिंग्स इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट। ए स्लिट इज प्रोवाइडेड इन द केसिंग ऑफ ए इक्विपमेंट मेकिंग इट पॉसिबल टू बी सीन एंड रिकॉर्डिंग द रीडिंग। इसको बोलते हैं टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। ए पेपर टेप इज ग्रेजुएटेड इन सच ए वे दैट इट गिव्स टाइमिंग्स इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट। ए स्लिट प्रोवाइडेड इन द केसिंग ऑफ इक्विपमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू बी सीन एंड रिकॉर्डिंग द रीडिंग। इस मेथड को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दिस मेथड एलिमिनेट्स द एरर्स ऑफ स्टॉप वॉच मेथड। स्टॉप वॉच मेथड जो है वो कॉमनली कहाँ होती है? कंटिन्यूस टाइमिंग के अंदर, साइकिल टाइमिंग के अंदर, एक्यूमुलेट टाइमिंग के अंदर और रिपीटिटिव टाइमिंग के अंदर। वहाँ पर ये बहुत अधिक स्टॉप वॉच होती है और TRM होती है आपके ग्रेजुएटिंग मेथड। और आखिरी होता है मोशन पिक्चर कैमरा, मोशन पिक्चर कैमरा। इट इज कवर्ड अंडर द माइक्रो मोशन स्टडी। सो द यूटिलिटी ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी इज कवर्ड अंडर द मोशन स्टडी। दिस कैमरा इज ड्रिवन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, दिस कैमरा इज ड्रिवन एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ सेवरल रेंजेस। Because of constant speed, time taken by each film is also calculated. So by knowing the number of films covered by operational element, the exact time is found. It is the work of motion picture camera. So this is all about the this camera. कैमरे दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन कैमरा और स्प्रिंग ड्रिवन कैमरा। टू टाइप्स ऑफ मोशन पिक्चर कैमरा कॉमन यूज में थे पहले। एक स्प्रिंग ड्रिवन कैमरा, इसमें जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ कैमरा इज नियरली कांस्टेंट। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन कैमरा। तो ये कुछ मुझे आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर पर टॉपिक बात करनी थी जो कि हमारे वर्क मेजरमेंट से रिलेटेड था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज अटेंडेंस। हैविंग लिसन्ड द लेक्चर, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन थ्रू SMS, थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू योर ईमेल अकाउंट। देन आई कैन गिव यू मोर टिप्स, मोर वी कैन हैव मोर इवन रिटन आंसर्स आल्सो आई कैन शेयर विथ यू इफ यू वांट टू certain questions. It was audible, well received lecture. Verb measurement के दो पार्ट थे, आज हम लोगों ने time study को cover किया है। Next time I will cover the motion study and PMTS. PMTS जो बहुत ही important term है उसको बार बार मैंने रिपीट भी किया था, सामने बोलते भी रिपीट किया था, क्योंकि पी एम टी एस जो है वो देट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज फार एज वर्क मेजरमेंट टेक्निक इज कंसर्न, बिकॉज हियर दी कंसेप्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड इज कवर्ड, और वहाँ पर भी बहुत सारे कुछ सब पॉइंट्स और सब टाइटल्स हैं, वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा इन माई नेक्स्ट क्लास. Wish you a very healthy time. Stay safe, stay healthy. Yes, sir.